उसे मिलने का बहाना मिल जाता है, इसलिए इसलिए वहां पर एक निष्ठता की हानि नहीं होगी। उसी प्रकार से प्रसाद रामानुज के साथ में हमारे गौड़ीय वैष्णवों का कुछ वैशिष्ट्य। रामानुज कहते हैं कि यदि मर जाएंगे, आग लगी हो और निकट में शिव मंदिर हो, हम शिव मंदिर में घुस करके प्राण की रक्षा नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। इतनी उनकी निष्ठा है। और शिव मंदिर में मरने पर भी हम नहीं जाएंगे। सांप काट रहा हो, खदेड़ रहा हो या बाघ, और शिव का मंदिर हो तो हम उसमें घुस करके अपने प्राण की रक्षा करने की कोई जरूरत, मर जाओ बल्कि वो ठीक है। इसलिए उनको जब पुरी से जगन्नाथ जी ने बहुत दूर पूर्वांचल में फेंक दिया, तो रात सवेरे उनकी नींद खुली तो देखा जब हम शिव के मंदिर में हम आ गए, यहाँ पर हजारों लाखों लोग शिव की पूजा कर रहे हैं, ओम शिवाय नमः। बड़े दुखी हुए, कहा जब अन्न जल छोड़ दिया और मरने के लिए तैयार हो, तो उस समय में एक दो दिन जब हो गया तो स्वप्न हुआ, अरे मैं शंकर थोड़े हूँ, जरा देखो तो सही जो मैं हूँ कौन, मैं तो कूर्मदेव यहाँ पर बैठा हूँ, लोग जानते हैं नहीं, इसलिए ओम शिवाय शिवाय नमः माता, तो उनके कहने से ही ओम शिवाय हो जाएगा, तुम जाओ भीतर देखो। भीतर में देखा तो कूर्मदेव, कूर्मदेव से आप करके शिवलिंग के रूप में पूजा कर रहे थे, जैसे मक्का मदीना में शिव की पूजा होती है, वो है शिव की मूर्ति, किंतु उनको अल्लाह खुदा की तो मूर्ति ही नहीं है, मूर्ति पूजा मानते ही नहीं है, किंतु वहां पर मक्के में मक्का शरीफ में क्या है, शिवलिंग, और उसी की पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप में विश्व में शिवलिंग, हाँ वो भी शिवलिंग की है, उनकी पूजा करते हैं दरगाह माने वही। भागवत में है ना कुछ उपाख्यान, विष्णु पुराण में उपाख्यान है, शिव का जो पूजा करेगा, देखिए कितना वैशिष्ट है, वो वहां पर जितने अघोरी श्रेणी के होते हैं सही महातामसिक होते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, राक्षस स्वभाव के होते हैं, रावण के वंशज जैसे, रावण तो भी सही था ना, इसलिए उन लोगों का बहिष्कार, सब लोगों ने सब वैष्णव बहिष्कार किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने शंकर जी का बहिष्कार किया, ऐसे लोगों की उपासना का बहिष्कार किया। तो इसलिए राम की सेवा से ही, राम के नाम करने से ही हमारी एकांतिकता नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ लोग रामायण नहीं पढ़ते, विशेष करके तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ते, हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, ऐसी नहीं बात। इसको यूँ देखिए कि हमारी कृष्ण की कितनी करुणामय लीला है, कृष्ण ही की लीला है, इस रूप में देखना चाहिए। अधिकांश लोगों को रामायण पढ़ते पढ़ते कृष्ण में भक्ति हो जाती है, हमारे भी पहले ही राम में ही निष्ठा थी, अभी भी निष्ठा वो हमारी कमी नहीं है, वैसे ही निष्ठा है, किंतु स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है, और ये सब सब बदलने के कारण ये सनातन गोस्वामी चैतन्य चैतन्य की इत्यादि ये सब हमारे गोस्वामियों के आचरण। तो कहते हैं सीतापते रघुनाथ लखन ज्येष्ठ प्रभोखन प्रियवर इत्यादि कीर्तय वेद शास्त्र का ख्यातम स्मरण तद्गुण रूप वैभव। आप उनके लीलाओं का, उनकी विनम्रता का, उनके गुणों इत्यादि का स्मरण करते ही उनके नामों का कीर्तन की और करते 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 अयोध्या में आ पहुंचे। तो उन्होंने कहा था कि हमारी एकांतिकना नष्ट हो जाएगी, ये नहीं, वो अन्य देवता है ही नहीं है, रामचंद्र जी कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवता नहीं है, यदि कोई ऐसा समझे तो अपराध हो जाए। पूर्णिमा का चांद और तृतीया का चांद अलग अलग है ऐसा समझना दोषपूर्ण है, एक ही है, एक ही चंद्र प्रकाश के तापन में से तृतीया जैसा दिख रहा है आकृति से, वो भी आंखों के दृष्टि के भेद से ऐसा हो रहा है, किंतु है एक ही तत्व। एक बात और बतलाया, जिस प्रकार से इष्ट लाभ हो उसका अनुष्ठान करना ही सच साचातुरी है, और यदि अपना इष्ट लाभ नहीं कर सका तो यही बेवकूफी मूर्खता है। इसलिए अपना इष्ट साधन कैसे हो इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो अब इष्ट चेष्टा क्या है, उनको मदन गोपाल का दर्शन करना है तो राम के तरफ में होकर कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए राम का नाम लो, कोई हर्ज नहीं है, अपनी निष्ठा ठीक रखो। एक भगवान का विष्णु का भक्त था, तो वो कहीं जा रहा था, इतने में एक शैव राजा से भेंट हुई, कहा जी इसको पकड़ लो, और शिव का पूजा करने वाला कोई मिल नहीं रहा, अच्छा मान लो टिक्की है मोटी फिलक धारण के इसी के द्वारा खड़ा हो, तो उसको पकड़ करके ले गए और बैठा जी पूजा करो, और यदि पूजा नहीं करेगा तो फलदार ये देख रहा है अभी तुम्हारी सीट पर है, ऐसा काट जी ने पूजा कर, और देखा जी क्या करें, वो पूजा करने के लिए बैठे, ऊपर से कुछ बोले ओम शिवाय नमः और भीतर सपन विष्णु, इस तरह से अपना काम चला लिया, उसका पूजा भी हो गया, वो समझ भी नहीं पाए और अपना काम हो गया, क्या हुआ था
उसे समझ में सुन लेंगे या विष्णु में नमः कह रहे हैं तो राजा मारने के लिए जाएंगे, जब गलत हटाएंगे देखे विष्णु मूर्ति उनके लिए बन गए,
ऐसे हो जाता है, एक निष्ठा इसमें नहीं नष्ट। अपने इष्ट देव की जहां पर थोड़ा सा भी संबंध है, थोड़ा सा भी संबंध है, तो अपनी जो सेवा है और जिसमें थोड़ी सी भी दूसरा संबंध युक्त सेवा है, अपनी सेवा को रख लेते हैं और उसकी सेवा की बहुमानना करते हैं, मुझे समझ में आए, साधारण सी बात नहीं, मान लिया कि एक बाहर का आदमी आया और हम लोग हैं, हमारे गुरु जी की या राधा कृष्ण की स्थिति दिख रहा है, या हमारे गुरु जी बैठे हैं, हमारे गुरु जी को प्रणाम करके और उनकी प्रशंसा करने लग गए, और वो दीक्षा फीक्षा कुछ नहीं दिया है और प्रणाम कर रहा है, और हमारे ये जो गुरु भाई हैं लोग वो दीक्षित हैं, किंतु उस समय मैं यदि और सबकी अपेक्षा उसको आदर यदि करूं तो कोई ये दोष की बात नहीं, आया समझ में, अपनी अपेक्षा वाह ये कैसे गुरु जी की सेवा कर रहा है, गुरु जी की बड़ी महिमा गान कर रहा है, देखो सुनो तो सुन लो सब उसकी, हम यदि हम गुणगान करते हैं तो एक निश्चयता नष्ट नहीं होगी, ये गुरु का शिष्य का ये लक्षण, या हमारे दूसरे किसी देवता देवी का हो किंतु हमारी सेवा ठाकुर जी की सेवा कर रहा है कभी कभी उसको हम लोग सम्मान देते हैं। कोई आदमी आया ठाकुर जी को यहाँ पर दर्शन कर रहा, नया एकदम आया, पुराना नहीं, और हमारे पुराने आदमी हैं जैसे कि सुनहरी लाल रोज आते हैं कि और सब लोग आते हैं, ज्ञानचंद आते हैं, तो जो नया आदमी आया कभी परिचित नहीं और ठाकुर जी को प्रणाम करके गदगद हो रहा है, तो हमने इनसे कुछ नहीं पूछा है ना? और मैंने उसको बुला करके कहाँ से आए, इसको प्रसाद दो तो भाई, इनको प्रसाद, फिर आएंगे। और ऐसा हो गया है जिस समय आप इन लोगों से बोलने की फुर्सत भी नहीं, तो ये भक्ति का विरोध हुआ ना, का विरोध नहीं है न। उनको ऐसा समझना चाहिए, उनको भी प्रसन्न होना चाहिए, हमको भी प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए अपनी सेवा के प्रति निष्ठा न देख करके दूसरे जो हमारे प्रभु के प्रति आराध्य के प्रति जो कुछ निष्ठा ज्ञापन कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हृदय में प्रसन्न होना चाहिए। जो नहीं प्रसन्न होता तो वो गुरु सेवा पर भगवत सेवक नहीं। ये कल नारद जी बतला रहे हैं, कैसे कैसे ये होता है। तो फिर उदाहरण देते हैं, हनुमान जी रामचंद्र जी के एक निष्ठ सेवक है ना, सीता जी का पता लगाने के लिए गए, किसी को मित्र बनाने गए हैं, किसी से मित्रता इत्यादि करने तो गए नहीं है, सीता जी का पता लगाना ही इनका प्रधान उद्देश्य। सीता जी को पता लगाने का उद्देश्य क्या है, रामचंद्र जी प्रसन्न। यदि उसमें रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं होते तो वो सीता का पता लगाने जाते नहीं जाते, तो रामचंद्र जी की प्रसन्नता ही उनके सीता जी को खोजने का उद्देश्य। अच्छे वहां गए, रात में ढूंढ रहे हैं, पुष्पक विमान पर चढ़ गए, छोटा सा रूप धारण, घर घर में जा रहे, देखा रावण मद्यपान करके विलास भवन में पड़ा हुआ है, अपूर्व सुंदरी एक नारी है, वो भी बेहोश होकर के पड़ी और उसके आस पास में सब ये सीता जी को मन में सोच रहा है, तो नहीं ये नहीं, सीता जी कभी भी एक तो मदपान नहीं कर सकते और रावण के साथ में कभी रह नहीं सकते, इसलिए सुंदरी होना ही सीता जी का लक्षण नहीं हो सकता, वो तो विरह में तड़प रही होंगी अनुमान लगाए, तो फिर वहां से चल पड़े, खोजते खोजते एक जगह गए तो कहीं तब तक सवेरा होने आ रहा था, सवेरा मैंने 3 बज रहा था, आवाज आई कानों में राम राम, अरे आसुरीपुरी में राक्षसों की पुरी में राम राम कौन कह रहा है, घट उतर गए, उतर करके देखा एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है और राम राम बैठ गए। जब उनकी आंख खुली तो बोले आप कौन, तो मैं एक ब्राह्मण हूँ यहाँ पर आ गया, सवेरे आप कौन, उन्होंने परिचय दिया कि मैं राम का लघु भ्राता विभीषण। तो इस लंकापुरी में रावण के तो सभी सहयोगी हैं और राम के विरोधी हैं, तो आप राम राम क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा बचपन से ही मुझे कुछ ऐसी राम पर हमारी निष्ठा है, इसलिए मैं राम का जपता हूँ, किंतु वो हमारा भाई है, मेरी बात नहीं मानता, इसलिए उसके साथ में रहना पड़ता है लाचारी के साथ, किंतु भगवान के प्रति ही हमारी निष्ठा है, मैं जानता हूँ कि राम भगवान। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो राम का सेवक हनुमान हूँ, सीता जी का पता लगाने के लिए और भरोसा उन पर हो और उनसे मित्रता कायम कर। अच्छा मित्रता किस लिए कायम की, ये खोजते खोजते हार जाएंगे, हार गए सारी रात खोजते खोजते सीता जी नहीं मिली, इनको ये भेद पता होगा। जब मित्रता कर ली और राम नाम के बल पर मित्रता हो गई, उन्होंने देखा जैसे इस असुर के हृदय में भी ये राम नाम का प्रति कुछ निष्ठा है, इसलिए हमारा मित्र हो सकता है और इसे हमारा काम बन सकता है। जट ने पता कर ली और फिर उनसे पूछा, आप बतला सकते हैं सीता जी कहाँ? तो जरूर बतला दूंगा। उन्होंने बतला अशोक वाटिका यहाँ से दूर है, ये लंका में नहीं रहता, वहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे पोता पूरा बतला दिया, बस विमान चले एक मिनट में वहाँ पर पहुँच गया। अब रामचंद्र जी के प्रति इनका देखा भाव, ये जप रहे हैं, अभी जो जप रहे हैं ये राम नाम, और ये तो दिन रात करते हैं, हृदय फाड़ करके दिखला दिया ये राम नाम हमारे समस्त अंगों में लिखा है, किंतु देखा जी हमसे इनकी निष्ठा अधिक है, क्योंकि हमारे कर्म का स्मरण। एक कुत्ता आया तो गुरु जी की पास में रखता है, गुरुजी आदर करते हैं, कुत्ता मान ले कि भूखा है तो अपने नहीं खाएगा, ये गुरुजी की प्रसन्नता का कारण है, कुछ भी देखो तो खिला देगा उसको आदर। यदि ऐसा नहीं है तो समझो जे उसमें अंदर में गुरु और भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है। ये सब किस लिए बतला रहे हैं? एकाग्रता की हानि नहीं होगी, इसलिए ये सब चीजें बतला रहे हैं। ये सब सब सिद्धांत है, रत्न है, ये सब अपने भजन में भी ये सब चीजों के भावों को हृदय में धारण करके चेष्टा करनी चाहिए। गुरु वैष्णव के प्रति कौन से भी कहीं पर कोई चीज देखो उसके प्रति आदर होना चाहिए, और जो आदर नहीं है स्पर्धा हो गया। अच्छा तुम कह रहे हो कि राम में राम दूसरे हैं और ये, ऐसा मत समझना, इनके ये तुमको सीधा मार्ग और आसानी से वहां पर पहुंचा दे। तुम पहले जाओ देखो, थोड़ा सा संबंध देखो तो उनमें क्या संबंध है, वो भी श्याम है तुम्हारे इष्ट देवी, वो भी द्विभुज है और तुम्हारे प्रभु भी, इनमें थोड़ा सा अंतर यह है कि धनुष बाण इनके हाथों में है और उनके हाथों में बंसी, ये थोड़ा सा यद्यपि वहां पर बंसी नहीं है, वहां पर कृष्ण तत्व के एकात्मक भाव को बतला रहे हैं। जो द्वारकाधीश मथुरेश और प्रजेश तीनों एक ही तत्व है, तत्वता एक ही ठीक ही है, रसवत कुछ वैशिष्ट है, अभी यहाँ पर ये बतलाने की जरूरत नहीं समझते, अभी कह दिया मथुरा में जन्म लियो और गोकुल में बलना में झूले और विवाह किया जाकर द्वारका में विवाह किया, नाती पोती से भरे हुए एकदम बड़े आनंद के साथ में, वही कृष्ण की लीला श्रीमद भागवत में दसम स्कंध में एक से लेकर के 90 अध्याय तक वर्णन है ना, वही कृष्ण का है तो लीला बढ़ी, अलग अलग नहीं, वही यहाँ से मथुरा आते हैं और वही वहीं से द्वारका जाते हैं, वही वहां से हस्तिनापुर जा रहे हैं, भले ही कोई स्वीकार करे ना करे तो विचार वो पीछे की बात है, किंतु प्रारंभ में तत्वता ऐसा समझ में आता है, एक ही भगवान है। यदि राम के पास में जाओ तो सही, देखो ये कैसे सुंदर है, जाओ और यदि तुम्हारा पेट न भरे वहां पर उनके रूप के दर्शन से, उनकी लीलाओं के दर्शन से, उनकी कृपा से पेट तुम्हारा न भरे माने मन न लगे, तो और तुम्हारी इष्ट देव की दर्शन करने की उत्कंठा न यदि बंद हो, तो उस करुणाशाली परम करुणाशाली राम ही आत्म चित्त से तुम्हें सुख से द्वारकापुरी में पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे, क्योंकि दो तो चीज है नहीं, एक ही है। अच्छा तुम्हारा यही मन लगता है हमारे राम कृष्ण रूप में चले गए। मथुरा में मन नहीं लग रहा है तो नहीं मार, वृंदावन जाने की इच्छा हो। अरे रहो मथुरा में ही रहो, हरी कथा सुनो और सब महाराज जी हम तो वृंदावन। अच्छा तो रूप सनातन गौड़िया मठ में चलो, क्यों कहा दोनों मठ एक ही है, एक ही जगह से संचालित होता है। ठीक है महाराज जी हमारी इच्छा हो ये भी जाने। ठीक है जाओ वहां पर भी
मिला
महाराज जी, यदि आदेश है तो मैं
नवद्वीप चलू,
नवद्वीप जाऊंद कोई बात नहीं। यद्यपि वहां पर मैं नहीं हूं, सब जगह बामन महाराज जी नहीं है, सब जगह तो विक्रम महाराज जी और सब नहीं है, किंतु फिर भी एक आत्मता है। मैं मथुरा से आया हूँ, वहां कहिए तो आदर करेंगे कि नहीं, कहाँ से आया है, किसने भेजा है। नारायण महाराज जी खाने पीने का चार्ज और कमरे का किराया का चार्ज कर लेंगे तो नहीं करेंगे, वहां से आया है ठीक हो खिलाएंगे पिलाएंगे। और दूसरे मठ में जाओ तो क्या करेंगे, पहले तो कहिए क्यों आए यहाँ, और इसके बाद में कुछ दिन रह गए तो एक दो दिन तो दे देगा, इसके बाद में कुछ चार्ज करना पड़ेगा। अपनत्व की भावना वहां पर नहीं मिलेगी, वहां पर अपनत्व की, इसलिए ये अयोध्या और द्वारका दोनों एक से अपनत्व है, इसलिए स्वयं ही तुमको वहां पर पहुंचाने की बात है। इसी टीम में बतलाया गया है कि जैसे कल इसकी व्याख्या मैंने की थी, जिस प्रकार से शिव के अनुग्रह से विष्णु को पाया जाता है और रघुनाथ जी की कृपा से वैसे ही राधा जी को पाया जाता है। देखो तुम बहुत दिनों से व्याकुल हो रहे हो अपने इष्ट देव को दर्शन करो, तुम्हारे इष्ट देव बाल गोपाल, बाल गोपाल के हाथों में एक हाथ में लड्डू और ये है ना मक्खन, और दूसरे हाथ में बंसी किंतु जरूर रहेगी, और यहाँ मोर कुछ भी जरूर लगा रहेगा, भले ही बालक हैं किंतु ये सब चिन्ह उनमें रहेगा। द्वारकाधीश में ये नहीं है किंतु उसका भी अभी स्वरूपतः वर्णन नहीं कर रहे, केवल तत्वतः वर्णन कर रहे हैं तीनों को मिलकर के एक को। तो द्वारकापुरी गमन करके जागरों से पर्वित कृष्णचंद्र जी का वहां पर दर्शन करेगा अयोध्या के माध्यम से, पहले अयोध्या जाओ और सुख पूर्वक तुमको वहां पर पहुंचा देंगे। और वहां पर जाने के लिए किंतु फिर वहां पर सीतापति अयोध्यापति यह समत कहना, जो ही अयोध्या पार करना जदुपति कहना, जदुनंदन कहना, ये सब नाम जो है सत्यभामा प्रिय रुक्मिणी प्रिय
रुक्मिणी का
ऐसे ऐसे सब नाम के पास में, जय हो वासुदेव की जय हो, देवकी नंदन की जय हो, द्वारकाधीश हाँ महाराज विराज द्वारकाधीश की जय हो, बस ये सब नाम करना। इसी उनके प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। इसलिए सुस्वर से उच्च स्वर से कीर्तन करना, कहने से मैं तो और शास्त्र के अनुसार में करना, यदि शास्त्र नहीं जानते हो तुमको जो मैं तो शास्त्र शास्त्र नहीं जानता हूं, पढ़ा लिखा तो नहीं। तो पति को एहो अजी ओ कहते हैं अजी इधर सुनिए तो, और भी कहते हैं कुछ कुछ मैं कहते हैं मैं, और भी जो मैंने ऐसा वो नाम निकाल लेती हैं और कुछ नहीं रहता, अरे वे दूसरों से वे कह देंगे, वे ऐसे हैं नाम नहीं लेंगे। तो ऐसे प्रभु को प्रसन्न करना और उनको कीर्तन में कोई भी शास्त्र त्याग की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से तुम करोगे वो महादयालु है, वो कोई दोष नहीं लेंगे। बस तुम नाम तो लो, उच्च स्वर से लो, धीरे धीरे लो, मन ही मन लो, किंतु उच्च स्वर से कीर्तन करना। उसमें सब समय मन एकाग्र हो जाएगा अपने उच्च स्वर से करना जो कुछ। यदि मन इधर उधर भड़क कर आया हो उच्च स्वर से कीर्तन खूब जोर जोर से करो। देखो जी मन कहाँ जाएगा, खूब जोर से लगाओ, मन भटक रहा है इधर उधर लगाओ बस। इसलिए नाम संकीर्तन करना ही वहां पर जाने का उपाय है। तो इधर में तो सीतापते इत्यादि नाम करना, जब वहां से जब भी चलना, यदि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होगा तो वो तुमको सब रास्ता ठीक करके सुखपूर्वक पहुंचा देंगे। और उस जाने में तुम किंतु ना वो कृष्ण नाम ये सब करते हुए जाना और उनके लीला चरित्रों का स्मरण गायन और चिंतन किया। अयोध्या द्वारका बैकुंठ का ही और ब्रज वो एक ही है, इसलिए तुमको ये जरूरी नहीं है कि बैकुंठ नाथ जी का आदेश लेकर के जाना। तुम सोच रहे हो इतना दिन तक द्वारका यहाँ पर वास किया बैकुंठ, तो उनका आदेश ले लें, उनको प्रणाम कर लें और उनसे पूछ लूँ कि प्रभु मैं आप अयोध्या जाऊँगा, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, हम इस कमरे से निकल करके रसोई घर में जा रहे हैं तो हमसे पूछने की जरूरत है महाराज जी मैं उस कमरे में जा रहा हूँ? इसलिए प्रभु ने हमसे कहा, प्रभु किसे कहा, गुरु जी से कहा, गुरु जी ने कहा। अब ये उत्कंठित व्यक्ति हो रहा है, हमारा भजन करना चाहता है, आप इसको उपदेश दे करके रास्ता बतला करके अपना संग दान करके हरि कथा के द्वारा अपने आचरणों के द्वारा शिक्षा दे करके इसको हमारे पास, अब ये आना चाहता है। आज जब तक आना नहीं चाहता था तब तक उपेक्षा कर रहे हैं, किंतु जहां थोड़ी सी रुचि हुई तहां ये प्रभु को चिंता हो जाती है। इसलिए प्रभु की तुम्हारी सब समय चिंता है, वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे वृत्ति को समझ लिया है, इसलिए हमको आदेश नारद आदेश वो क्या दिया है, भो नारद हो नारद तुम रहस्य गत्वा, तुम रहस्य एकांत रूप में गुप्त रूप से जाकर के निर्जन में जाकर तस्य गोकुमारस्य मनोरथं कृष्णं परिपूर्य, उसका मनोरथ संपूर्ण रूप से पूर्ण करो। उसको यहाँ से वो जाना चाहता है अपने प्रभु के पास में, ऐसा उपाय करके उसको बतलाओ जैसे वो चाहे। तो उनको आदेश देने की जरूरत क्या है, खुद ही क्यों नहीं आदेश दे दिया, है ना? प्रभु खुद आदेश दे सकते थे, उनके यहाँ चला जाता कहते जी भाई तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तुम यहाँ से अयोध्या चले जाओ, नहीं ये गुरु उनकी कृपा ही गुरु है, ये सब गुरु के माध्यम से ही ये सब काम होता है, खुद आदेश नहीं देते। क्यों नहीं देंगे, इसका एक कारण है, नारायण इतने सुंदर हैं, इतने कुछ और अशस्त्र भी कुछ हैं, इतने कृपालु और दयालु हैं, यदि उनके पास में जाएगा तो उसकी चित्त वृत्ति जो जाने की तो थी वहां अपने प्रभु के यहाँ उत्पन्न का वो शांत देखने से है? देखने से शांत हो जाएगी, और जब दूर रहता है तो फिर उसके अंदर में उत्कंठा होती कब गए प्रभु के पास, किंतु उनके समीप में जाने से उसका कौतूहल उत्कंठा सब दूर हो जाएगी। ये प्रभु का ही कुछ स्वरूप का ये गुण है। अभी तक यहाँ पर गए हैं ऐसे ही हुई है, तो इसलिए कहते हैं कि नारद जी ने चतुराई के साथ उनको भेज दिया तो चतुराई के साथ में ये गए और उससे कह रहे हैं, उसने कहा जी नहीं जाऊंगा, दंडवत प्रणाम कर भाई मत जाओ, यदि जाएगा तो वहां पर प्रभु का रूप देखेगा, उनका गुण देखेगा, थोड़ा सा मृदु मुस्कान देखेगा और उस पर लट्टू हो जाएगा, फिर तुम्हारा जाना रुक जाएगा। और प्रभु की इच्छा है कि तुमको अब रोका नहीं जाए किसी तरह, क्योंकि तुम्हारी मनोरथ की स्वरूपतः सिद्धि यहाँ नहीं होगी, तुमको वहीं पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो हमको भेजेंगे, इसको अब कृपा करके आप वापस ले। दूसरी बात थोड़ा सा ये किया, प्रभु यहाँ है नहीं बैकुंठ, तुम जाएगा। एवं महाभक्त भक्तम अनुग्रहीतुं स्वयं कुतश्चित भगवान गतो वहां आयम सोढ़ुं विलंबम नहीं शक्यसी त्वं तन्निर्गमे ते अवसरो बरो आयम। प्रभु अभी कहीं अन्यत्र गए हैं किसी भक्त पर कृपा करने के लिए, इसलिए बैकुंठ में तुम जाने पर भी मिलेंगे नहीं, तो मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा कर दूंगा, वो प्रभु आ जाएंगे, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लूँ, हो सकता है कि विलंब हो जाए, तुम क्या करोगे, तुम तो बड़े उत्कंठित हो इस समय जाने के लिए, इसलिए जाओगे तुम्हारा उधर का काम भी नहीं होगा, इधर का काम भी नहीं होगा, विलंब हो जाएगा, तो तुम बहुत उत्कंठित हो इसलिए तुम्हारा विलंब करना उचित नहीं, तुमको चला जाना ही। और प्रभु ने